जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध केशान् यजेयम् सुगत मगधरम् वा वागधीशम् शिवम् वा जित भवमभिवन्दे भासुरम् श्रीजिनम् वा रमियूण जिनम् वीरम् अनन्तवर्णान् दंशन सहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवली सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुन्द देव द्वारा निज भावना के घोलन के लिए यानी स्वांतः सुखाए आनंद रस का पान करने के लिए जिसकी रचना की गई, ऐसा ये नियम सार परमागम शास्त्र यहाँ विराजमान है। आज पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका कलश नंबर कौन सा था 227, उसके ऊपर गुरुदेव श्री का व्याख्यान हुआ 136 गाथा के ऊपर। पहले 136 गाथा का थोड़ा अंश लिया। आप देखिए, कल उन्होंने जो व्याख्यान किया उसमें एक घंटे में 5 कलशों पर व्याख्यान किया, और आज एक घंटे में लगभग समझ लीजिए 50 मिनट एक ही कलश चला। इससे हम क्या समझें? गुरुदेव को बैलेंस बनाना चाहिए कि भेदभाव नहीं करना चाहिए? हर कलश के ऊपर 15 मिनट देना है, हर गाथा में सिमिलर एक टाइम देना, किसी में 1 घंटा लगा देना, किसी को 10 मिनट में निपटा देना, ये कौन सी थिंकिंग है? इससे ये पता चलता है कि उन्हें कोई कोर्स पूरा नहीं करना है। वो माथे कोई बोझा लेके नहीं बैठते कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतनी बातें कहना है, ऐसा कोई उनके भीतर बिल्कुल बोझा नहीं रहता। एक अपेक्षा से देखा जाए से तो जैसे मुनिराज बिल्कुल निराकुल बिना बोझे के 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसी तरह से गुरुदेव श्री बिना बोझों के स्वाध्याय चलाते हैं। जितना रस खींचते बना, जितना रस लेना उद्गार उनके निकले, चिंतन चला, उतना आनंद लिया, बाकी आगे बढ़ गए। ये सर्वोत्तम शैली है। वास्तव में व्याख्यान इसको कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभी किसी पंच कल्याणक में, खासकर अलीगढ़ में या और भी जगह, जहां जब दिव्य ध्वनि की रचना होती है, वो समोसरण की रचना होती है और दिव्य ध्वनि का रूपक रखते हैं, उसके बाद में मेरे से कमेंट्स किए बिना रहा नहीं जाता है। तो मैं उसमें एक बार एक बात कहता हूं, कोई अगर मुझसे पूछे कि दिव्य ध्वनि कैसी होती होगी, तो मैं गुरुदेव के प्रवचन की ओर इशारा करके कहूंगा कि ऐसी होती होगी। फर्क केवल इतना है कि उस दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान निमित्त है, इसमें श्रुत ज्ञान निमित्त है। वो जो तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि होती है वो देवकृत अतिशय भी है और एकाक्षरी होती है, उसमें ओम ध्वनि में ही सब कुछ आ जाता है। उसमें 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएं गर्भित होती, पूजा में शायद आपने पढ़ा होगा, दस अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सुचेत। इस दिव्य ध्वनि में ऐसा चमत्कार नहीं है, अतिशय नहीं है। ये एकाक्षरी है, ये छठवीं क्लास पास स्टैंडर्ड की गुजराती है, जिसमें काठियावाड़ी मिक्स है। समझ में आया? लेकिन जो समुद्र जैसी गहराई, भावों की गंभीरता और चैतन्य रस की वर्षा, आनंद रस की वर्षा का जो समझ लो प्रताप है, वो अद्भुत है। शायद इसलिए पूज्य बेंसरी ने एक जगह लिखा कि गुरुदेव को श्रुत की अपूर्व लब्धि है। ये तो ठीक है, पर व्याख्यान के बारे में लिखा कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तो कभी ऐसा बोर नहीं होते कि यार अभी तो ये तो बहुत हो गया, अभी तो बंद करो। ये बात तो कल भी सुनी थी उनका, वो बेअबद 40 करोड़, वो जितने बार सुनो उतने ही बार नया नया लगता है। इस तरह है, क्योंकि वो फील करते हैं, उसको बोलते, सुनाने के लिए नहीं बोलते। आज भी अपन दो चार प्रकरण अपन देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो 236 पेज पर 236 में ये जीव ने कैसे अपना अनंत भव खो दिया और मनुष्य भव भी किस प्रकार खो रहे हैं, उसका बहुत मार्मिक चित्रण उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। सबसे ऊपर की ही पहली पंक्ति की दो चार पंक्तियां पढ़ते हैं। आहा हा भाई, धर्म कोई जुदी चीज है, एक सेकंड पण अनंत काल ना परिभ्रमण ना भवमा। अनंत भवमा, देखो अनंत भव को लेते हैं, अनंत भवमा अनंत काल ना परिभ्रमण मा, एक सेकंड मात्र पण चैतन्य ने जोयो नथी। तो जोया नहीं, कुछ भी नहीं देखा, तो देखा ना, जोनारे जोयू छे, बीजू पण जोनारे पोता ने जोयो नथी। बीजू जोयू, दुनिया को देखा, सबको देखा, अपने को नहीं देखा, देखने वाले को नहीं देखा। धर्म तो उसमें ही है। धर्म माने मुक्ति का विधान, धर्म माने सुखी होने का उपाय, सुखी होने का मार्ग। तो वो तो अपने को देखने में ही है। तो अपने को देखने का क्या मतलब है कि जगत में कोई दीन दुखी है कि नहीं, उसकी तरफ नहीं देखना। अपना पेट भर जाए, अपना मकान बढ़िया हो जाए, समझ में आया, अपने सब खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाए, ऐसा अपने को अपना ध्यान रखना चाहिए। दुनिया का क्यों रखें अपन ध्यान? भैया, अपने को देखने का मतलब है जो अपना त्रैकालिक वास्तविक स्वरूप है उसको देखना। ये जड़ शरीर को देखना, ये अपने को देखना नहीं है, ये तो पर को देखना होगा। जोनार तो भगवान आत्मा चैतन्य जो छे, ए जोनार बीजा ने जोवा मा अटकेलो छे। वो हमारे यहाँ देवलाली में रहते हैं बापू, वो है ना घाट कोपर के, हाँ, गुरुदेव के सामने बहुत बहुत भावुक होकर गाते थे, गुरुदेव की आंख में भी पानी आ जाता था उनका गीत सुन करके। जानवाना लोभ मां सगलो संसार छे, ये बहुत प्रसिद्ध गीत था। सारी दुनिया जानने के लोभ में पड़ी, ये इंटरनेट क्या है, ये व्हाट्सएप क्या है, ये मोबाइल क्या है, ये जितना ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हुआ है ये काई के लिए हुआ है? जानने के लोभ की पूर्ति के लिए हुआ है। देखो, जानना तो स्वभाव है, लेकिन जानने वाले को छोड़कर पर को जानने के लिए आकांक्षा रखना, ये 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 अनंतानुबंधी लोभ है, अनंत पर पदार्थों को जानने का लोभ है। तो इसमें बीजा ने जानवू ए तो व्यवहार, सवार मां आवी हो तू, बीजा ने जानवू ए तो व्यवहार छे, पोता ने अंतर मां जानवू, ज्ञान अने आनंद नो अनुभव थवो। आ, ये इसमें एक टॉपिक आ गया है जिस पर कई दिन बोला जा सकता है स्वपर प्रकाशक वाला, कि दूसरे को जानना ये व्यवहार है। कभी अवसर आया तो कोई प्रकरण बनेगा अलग से, क्योंकि अभी तो विषयांतर हो जाएगा, क्यों व्यवहार उसमें लागू पड़ता है। तो जानता नहीं है क्या? नहीं जानता, और जानता है ऐसा कह दिया, खोटा उपचार से कह दिया। एक बाजू कहते हैं एक समय में लोका लोक को जाने ये भी ताकत केवल ज्ञान में प्रकट हुई है, तो वो नहीं हुई, वो व्यवहार से हुई सुमिल। खरेखर एक परिभाषा बताई थी परसों, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। किसी वस्तु का उसके स्वरूप से वर्णन करना वो निश्चय है, पर के सहारे से कथन करना वो व्यवहार है। क्या? तो ज्ञान का ज्ञान के स्वरूप से वर्णन करना, कि ज्ञान तो जानन क्रिया रूप परिणमता है, उसमें पर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये निश्चय का कथन हुआ। पर को जानने के काल में भी ज्ञान अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करता है। वो सिद्ध पूजा में आता है, खजाने में तो बहुत भरा है, पर अभी कितना निकले। क्या है वो? तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, कहे तुम ज्ञायक लोकालोक, अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है गेय वही है भोग। देखो, एक केवल ज्ञान के बारे में विचार करते हैं, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न है। तो व्यवहार तो लोग दुनिया तो यही कहेगी है, सकल गेय ज्ञायक, संपूर्ण गेयों को जानने वाला ऐसा प्रभु का, वो भक्ति में बोलते ना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धातम में, प्रतिक्षण हो आनंद महान, मोह महातम तुरत विलाय, जब जिनवर के दर्शन पाए। तो लोकालोक झलकते जिसमें लोकालोक, और ऐसा आचार्यों ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में, प्रसाद सिद्ध उपाय के मंगलाचरण में, रत्नकंड श्रावकाचार्य में क्या लिखा मालूम? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाये थे। जिनकी विद्या यानी ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए दर्पणाये थे, दर्पण के समान आचरण करती। दर्पण अपनी जगह फिक्स है, किसी को कहता नहीं कि तुम मेरे अंदर झलको। उसकी स्वच्छता के परिणमन में सामने वाला पदार्थ झलकता है, दर्पण को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उसका स्वरूप खंडित भी नहीं होता, उसके अंदर वो पदार्थ आता भी नहीं है, दर्पण पर पदार्थ में जाता भी नहीं है, लेकिन झलकता है। तो दर्पण में पदार्थ झलकता है, ये दर्पण का पराश्रित कथन है। पदार्थ से दर्पण की व्याख्या की गई है। क्या बोला? थोड़ा सूक्ष्म है भाई, आना चाहिए ना सूक्ष्म, तो यहाँ तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जहाँ गुरुदेव की धारा बहती है वहाँ क्या सूक्ष्म। ये दर्पण का पराश्रित निरूपण है, क्योंकि हमने दर्पण की व्याख्या दर्पण से नहीं की, हमने दर्पण की व्याख्या पदार्थ से की है, तो इसलिए व्यवहार हुआ। उसमें नहीं झलकते हैं, दर्पण अंधा है, पत्थर जैसा, दीवाल जैसा, ऐसा नहीं है। उसकी स्वच्छता में सामने का पदार्थ झलकता है, ये क्या नहीं व्यवहार? क्यों? पदार्थ है ही नहीं तो क्या झलकेगा? क्या बोला? अंदर जा, अपना चेहरा दर्पण के अंदर जाता है, ईमानदारी से बोलो, अपना फेस जो है दर्पण में घुस जाता है? नहीं घुसता। तो जो दर्पण में दिखा वो क्या था? वो दर्पण ही था, वो दर्पण की स्वच्छता का परिणमन था। तो दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ये दर्पण की स्वच्छता है ऐसा कहना, ये स्वाश्रित निरूपण हुआ, ये निश्चय हुआ। और ये हमारा चेहरा है ऐसा कहना ये पराश्रित निरूपण हुआ, ये व्यवहार हुआ। अरे ये अपने अपने ये स्टेच्यू रखा है इसको गुरुदेव कहना निश्चय है कि व्यवहार समझ में आया। इसमें गुरुदेव है, उनका आत्मा के, उनका ज्ञान के, उनका आनंद के, उनकी वाणी क्या है, आकार मात्र गुरुदेव जैसा है। तो उस जिसका भी आपने काय चीज का बनवाया मुझे पता नहीं है, कनाडा से बन के आया है तो इसमें गुरुदेव की स्थापना ये व्यवहार हुआ। परमार्थ से तो जो इसका उपादान है वो इसका स्वरूप है। खैर, इसलिए गुरुदेव के व्याख्यान में बारंबार ये आती बात, खरेखर ज्ञान पोताने जाने छे, पोतानी पर्याय ने जाने छे, परने जाने छे एम केवूं ते व्यवहार छे। केम केम के पर पदार्थ ज्ञान मां प्रवेश करतो नथी, जब आए ही नहीं तो जाना क्या, ऐसा है। एक और बहुत सुंदर अर्थ किया मेरे लिए ये पहला नया प्रमेय आज यहाँ का है, पारला का, मुक्ति वधु के चरण कमलनी परम भक्ति करे छे। इसी पेज पर, इसके जो ऊपर मैंने पढ़ा उसके बाद वाला पैराग्राफ, उसको छोड़ के उसके बाद वाला पैराग्राफ, उसमें नीचे से चौथी पांचवी लाइन ये बोल्ड में है ना, निवृत्ति नी मुक्ति रूपी स्त्री ना, आहा हा अंदर स्थापे छे, ज्यारे आनंद मां रहे छे त्यारे ए निवृत्ति ना, इटले मुक्ति रूपी स्त्री ना। मुक्ति के लिए एक नया शब्द आया निवृत्ति, कल भाई थी ना निवृत्ति लेना। खरेखर तो मुक्ति शब्द का अर्थ ही छूटना होता है, मुंच धातु से मुक्ति बनी है मोक्ष है, और मोक्ष माने छूटना, काय से छूटना, तो अभिप्राय में पर के बोझे से छूटना, कर्तापने के बोझे से छूटना। वो गृहस्थ आश्रम में होवे, इंद्र होवे, चक्रवर्ती होवे, तो भी वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो अपने अभिप्राय में पर के कर्तत्व और एकत्व के बोझे से मुक्त हो गया। हम जिसको अपना मानेंगे उसका बोझा रखेंगे, हम मानेंगे ये मंदिर मेरा है, ये संस्था मेरी, अभी मैं इसका मेंबर बन गया, मैं यहीं रहने लगा, तो इसके व्यवस्था का बोझा आएगा। जब जिसको हम अपना नहीं मानते, दुनिया भर के मंदिर को समझ में आए, अकृत्रिम चैत्यालय वो अपना मानते पूजा तो करते, ये मेरा है ऐसा मानते, तो उस संबंधी कोई विकल्प नहीं आता। यानी सारे विकल्प जालों की जड़ अपनापन है, एकत्व बुद्धि है। देह में भी एकत्व बुद्धि है तो विकल्प जाल खड़ा होता है, एकत्व बुद्धि टूट गई तो अनंतानुबंधी विकल्प समाप्त हो गए, फिर थोड़े बहुत रहते वो जुदी बात। मुझे तो दूसरा बताना, मुक्ति रूपी स्त्री नी, मुक्ति तो पूर्ण दशा छे, आया इसमें देखा, मुक्ति तो पूर्ण दशा छे। हाँ, पूर्ण दशा किसकी, आत्मा की, किसकी दशा, वो कुनकुन शतक में एक गाथा है, शायद वो अष्टपाहुड की है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये भी भाई अद्भुत संकलन है, ये 2000वां वर्ष कुंदकुंदाचार्य देव का आज से 20-25 वर्ष पहले मनाया गया था। उस समय हम जयपुर में थे, तब डॉक्टर साहब ने 101 गाथाएं, पांचों परमागम की सिलेक्टेड 101 गाथाएं, सब विषय उसमें आ गया, द्रव्य गुण पर्याय भी आ गया, भक्ति भी आ गई, नियम सार भी आ गया, अष्टपावड़ भी आ गया। अष्टपावड़ में जो समझ लो शिथिलाचार है उसकी जो गाथाएं हैं वो भी आ गई। आपको परमागम का निचोड़ 101 गाथाओं में मिल जाएगा, ऐसा है। अब मैं समझता हूँ अपने मुमुक्षु समाज में जैन रचनाओं की सीडी रिकॉर्डिंग पहली अगर कोई हुई तो वो कुन-कुन शतक की हुई थी। उस समय ये सीडी तो थी नहीं, ये वाली, उस समय तो वो जो कैसेट लगती है ना, उसमें रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ये आत्मा की अवस्था है। तो ऊपर आकाश में मोक्ष होवे के ऊपर लटक जाते हैं तो वहां मोक्ष होता है। एक बात कल आई थी, मैं कहना भूल गया, सिद्ध दशा प्रगट तो यही हो जाती है, रहना ऊपर होता है। ये कल आया था शायद ये, सिद्ध दशा प्रगट तो यही हो जाती, चार घाती अघाती जो शेष रहे ना, चौदहवें गुण स्थान में जो कर्म की 148 प्रकृतियां हैं उनमें 85 प्रकृतियां बाकी रहती अनंत भगवान को। तो वो 85 प्रकृतियों का जो क्षय है वो अयोगी गुण स्थान में उसके क्षय होने की प्रक्रिया चलती है, अंतर मुहूर्त, बहुत कम, अयुरी इतना बोला और गया, हो गया काम, ये 2 सेकंड भी नहीं लगे। तो वो 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है और ये नौ कर्म शरीर ये यहीं छूट गया, चार अघाती कर्म यहीं छूट गए। वो ऊपर जाते भगवान तो कर्म लेके नहीं जाते हैं। तो सिद्ध दशा किसे कहते हैं? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित अवस्था वही तो सिद्ध दशा है। तो वो तो यहीं हो गई और फिर तदनंतर एक समय में 7 राज्य ऊपर जाके लोकाग्र में स्थिर हो जाते। देखो गुरुदेव, अपन तो वास्तव में गुरुदेव की ज्ञान की आनंद की महिमा करें ये भी छोटे मुंह बड़ी बात लगती है। अपन कहां इस योग्य हैं, लेकिन मन में आता है कि कैसी सूक्ष्म पकड़ है कि सिद्धत्व यहां हो गया और एक समय में जाके जीव वहां स्थिर हो जाता है। फिर कब तक रहिए? अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत अनंत काल तक। तो अभी उसके चरण कमल कहां से आ गए? ये तो टीकाकार ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि कोई कांजी स्वामी नाम का महापुरुष होएगा वो ऐसा अर्थ करेगा। सुनना ध्यान से, उनने तो जो उनकी शैली है टीकाकार मुनिराज की, श्रृंगारिक शैली, वो अध्यात्म को श्रृंगार के बर्तन में अध्यात्म रस प्रस्तुत करते हैं। बहुत श्रृंगार, कल तो आया था ना मुक्ति वधु के पुष्ट स्तन, कितनी उसकी गुरुदेव ने व्याख्या की थी, मुक्ति वधु के पुष्ट स्तन की कितनी व्याख्या की थी। तो वो श्रृंगार की स्टाइल में उन्होंने बोला कि मुक्ति वधु के चरण कमल की सेवा। अभी गुरुदेव ने 2-3 बार ये अर्थ किया इसी में, क्या अर्थ किया? नीचे साधक पड़े निश्चय रत्न त्रेणी भक्ति करे छे, एना चरण कमल एटले साधक। अरे गजब हो गया, ये कहां से आया चरण कमल का अर्थ, साधक कहां से हो गया, कौन सी डिक्शनरी में? हिंदुस्तान की किसी डिक्शनरी में? जिनेंद्र सिद्धांत कोश में भी नहीं मिलेगा आपको। जिनेंद्र सिद्धांत कोश जानते हैं? एक छुल्लक जिनेंद्र वर्णी हुए, वो बहुत स्वाध्यायी थे। तो जब वो स्वाध्याय करते थे तो जो भी पारिभाषिक शब्द आते थे वो डायरी में नोट कर लेते थे, कहां कहां ये आता है, कहां इसका क्या अर्थ किया है, फिर उसका उन्होंने संकलन प्रकाशित किया, मोटे मोटे 1000-1000 पेज के लगभग 4 वॉल्यूम, वो जिनेंद्र सिद्धांत कोश कहलाता है। समझ लो आपको उपलब्ध जिनागम के जो भी पारिभाषिक शब्द देखना हो और हिंदी का अल्फाबेटिकल के हिसाब से, अभी तो शायद दिल्ली का कोई भाई है वो उसको दोबारा टाइप करके वेबसाइट पर भी डाल रहा है, ऐसा मुझे बताया गया, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। चरण नीचे होते हैं, समझ में आया गुरुदेव ने अर्थ क्यों निकाला है कि मुक्ति श्री का जो मुख का सौंदर्य तो ऊंचा होता है और चरण नीचे होते हैं, तो मोक्ष के नीचे वाली दशा कौन सी है? वो साधक दशा है। इसलिए मुक्ति वधु के चरण कमल की सेवा, उसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना। बोलो, ये तो ये भी अनुपम अर्थ है वास्तव में। फिर उसके बाद में देखो भक्ति के बारे में, आने मोक्ष मार्ग कहिए, आने निज भक्ति कहिए, बाकी बधुं साधन व्यवहार व्यवहार व्यवहार। अभी एक मार्मिक बात और समझ, व्यवहार आड़े नवरो नथी, एक बात। फिर और दूसरा कोड़ा लगाया, आ तो व्यवहार धंधामा नवरो नथी, दो व्यवहार। समझ में आया ये बात? पंडित जी ने, टोडरमल जी ने ये व्यवहारवासी प्रकरण में ही शायद एक जगह लिखी है कि या तो जब जीव को कषाय की तीव्रता उदय होता है ना मोह का, तो विषय कषाय में परिवर्तित होता है, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, विषय भोग में, दुनिया भर में, अखबार में, पर निंदा में। समझ में आया? आत्मा के बारे में सोचा के भी नहीं। अरे आत्मा की छोड़ो, देवशास्त्र गुरु के बारे में भी नहीं सोचेगा। विषय कषाय की जब उदय तीव्र होता है तो विषय कषाय में, पांच इंद्रिय के विषयों में और रागादि भावों के कषायों की पूर्ति में, उसमें इसका उपयोग ज्वाइंट हो जाता है। कदाचित कषाय मंदता होवे, ऐसे लिखा है टोडरमल जी ने, जब कषाय की मंदता होवे तो व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करता है। ये अपन सुबह से क्या करते है? अभिषेक है, पूजन है, स्वाध्याय है, ये कषाय की मंदता का प्रतीक है। नहीं तो इस एरिया में इससे मेरे ख्याल से 5-7 गुने जैनी भाई रहते होंगे, यहाँ से 1-2 किलोमीटर के रेडियस में है। और बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि अच्छा बढ़िया मंदिर बना है, कोई को तो ऐसा लगता है कि ये अपना नहीं है, ये तो सोनगढ़ पंथ का है। इसलिए नहीं आवे कोई कोई कौतूहल, हाँ यार ये लोग मंदिर तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, इनका जो मंदिर बनाने का स्टैंडर्ड है। जैसे अभी हम छिंदवाड़ा गए थे, पहले 6 साल छिंदवाड़ा रहे ना, तो वहां पे जो एक मारवाड़ी समाज ने मंदिर बनाया, तभी वो ही लोग कहते हैं ये मंदिर इन्होंने बिल्कुल सोनवर स्टाइल का बनाया, वैसी भव्य वेदी, वैसी भव्य मनोहर अंतर्मुखी प्रतिमा, वैसी स्वच्छता, वैसी बिल्कुल सोनगढ़ पद्धति का मंदिर बना है। तो सोनगढ़ इसलिए भी प्रसिद्ध है भाई है। तो कहने का ऐसा ये है, लेकिन स्वाध्याय में नहीं आवे ऐसा। हम कैलिफोर्निया जाते थे तो पूजा में 100 लोग हाजिर और स्वाध्याय में 15-20 लोग। अब ये भी ये वर्गीकरण थोड़ा अच्छा नहीं लगता, गुजराती भाषी लोग वो स्वाध्याय में हाजिर, समझ में आया, वो पूजा में भी रहते थे लेकिन वो स्वाध्याय नहीं छोड़े। और बाकी जो दूसरे मारवाड़ी समाज के लोग, पूजा में तो मजा आवे, शीतलनाथ की भी होना, श्रेयांशनाथ की भी होना, शांतिनाथ की भी होना, ये भी अर्घ होना, सब होना। उनके यार बड़ा अच्छा है, जब हम इनके लिए इतने अर्घ बोल रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट हमारा प्रवचन तो सुनेंगे। उसका रस नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है, इन सब में कथनचित लगाना है, ये कोई भी बात सर्वथा लागू नहीं पड़ती सबके ऊपर, लेकिन वो उसकी वृत्ति ऐसी। तो व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है भैया, ये स्वाध्याय करना, कराना, सुनना, सुनाना, ये भी व्यवहार धर्म ही है, ये कोई निश्चय धर्म नहीं है। गुरुदेव श्री ने क्या फरमाया, व्यवहार आड़े नवरो नथी, उसमें टाइम चला जाता है और एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करता कि ये मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, इससे क्या प्रयोजन, काय के लिए कर रहा हूं, इससे मेरे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, ये विचार नहीं करता है। नवरो नवरो का मतलब ये छोड़ के बैठ जाना, ये नहीं है। और अपने यहां की तो शैली ये है कि आप पूजा में भी जो मैटर आता है वो इतनी सरल भाषा में है कि आप उस समय भी विचार कर सकते हैं। और गुरुदेव का प्रवचन तो इतना स्लो, एक एक बात को 6-6 दफे रिपीट करेंगे, आप बहुत आराम से विचार कर सकते हो, वो विचार भी खरेखर व्यवहार है। समझ में आया? लेकिन अंदर जाने के लिए वो एक बीच में स्टेप आए बिना रहता नहीं। वाचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगड़ो सार। वाचे पण विचार नहीं करे, भोजन तो खूब करे लेकिन पचे नहीं तो क्या फायदा। धर्म ने नामे व्यवहार, एमाथी पण नवरो नथी था। तो कोई को तो धंधा व्यापार के व्यवहार से फुर्सत नहीं मिलती, और किसी को भक्ति दया दान प्रवचन पूजा स्वाध्याय इस व्यवहार से फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत कोई बाहर में समय निकाल के खाली नवरा बैठना ये फुर्सत का मतलब नहीं है। मानसिकता उसकी फुर्सत वाली होना चाहिए, ख्याल में आया ना, मेंटली फुर्सत होवे, विचार करने के लिए उसको आदत होनी चाहिए। ऐसे बहुत से हैं, अभी तो पता ही नहीं चलता तो आधा घंटा कैसे निकल गया। और अभी एक दो खास बातें ऐसे ही इसमें भी लिखा है 237 पेज पे, तो जरा चरण कमल की सेवा को गुरुदेव ने और लोकल लैंग्वेज में रखा है 237 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, ऊपर की पंक्ति से पढ़ता हूँ वो पैरा। अही तो सिद्ध भगवंतोनी भक्ति पण राग छे, बोलो हाँ हाँ, उतेज निर्मलानंद पूर्ण मोक्षनी पर्याय जे छे तेनु आ साधन छे, ये निश्चय रत्नत्र है। तेथी ते मुक्ति रूपी स्त्री तेना चरण कमल आहा इटले एना पग दाबे छे। क्या बोला? रत्नत्रय की सेवा करना माने मुक्ति वधु के पैर दाबने जैसा है। ये जनता को क्या है, वो विषय का परिचय है, उसका रस है, इसलिए आचार्य देव उस लैंग्वेज में, जैसे अपन लोग कहते ना जब बच्चे आए तो आप बच्चों की भाषा में बात करना, हमारे जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादा सक्सेस होते बच्चों के यूथ की क्लास में, वो थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी बोलेंगे, थोड़ा उसमें आधुनिक शैली की सब बात करेंगे। तो वैसे आचार्य देव ने सोचा कि यार ये विषय कसाई के प्रेमी बच्चे हैं तो थोड़ा उनको उस लैंग्वेज में बोलो। मुक्ति बधुना पग दावे छे, हजी ऊपर जाऊं छे ना, ये लो। ये जैसे कहते हैं गुरु के पग दावेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो अपन को ऊपर जाएंगे व्यवहार में, वैसे निश्चय रत्नत्रय रूप प्रणमन करना वो ऊपर जाने के लिए यानी मुक्ति पाने के लिए मुक्ति वधु के पग दाबने जैसा है। ये बात तो आज उन्होंने 4-5 बार कही, शब्दों थोड़ा पड़े छे, कितना बोले भाव इतना उछलता है, भाव इतना उछलता है, शब्दों थोड़ा पड़े छे। ये 4-5 जगह ये बात आई है, आप लोगों ने भी लक्ष्य किया होगा ना? अभी 240 पेज एक थोड़े अप्रचलित बात जो कम सुनने में आती है, देखो 240 पेज और नीचे से तीसरा पैराग्राफ आ हुआ मिला, प्रत्यक्ष आ शब्द छे ना, आ प्रत्यक्ष अवचलित चलित न थाए एवं ध्रुव। अभी ये ध्रुव शब्द किसके लिए, आत्मा के लिए नहीं है, ये पर्याय के लिए। देखो त्रिकाली ध्रुव तो छे पण पर्याय मा एवी अप्रतिहत ध्रुवता आवी, जेवो ध्रुव छे एवी अप्रतिहत परिणति आवी। आहा ऐसी बातें बहुत कम आती हैं। यहाँ ध्रुव का मतलब ये है, पर्याय की ध्रुवता के दो अर्थ होते हैं। ये पंच बाल्यती पूजन की कभी पंच बाल्यती पूजन, हे प्रभु ध्रुव की ध्रुव परिणति के पावन जल में कर स्नान, शुद्ध अतिन्द्रिय आनंद रस का करो निरंतर अमृत पान, क्षणवर्ती पर्यायों का तो जन्म मरण है नित्य स्वभाव। क्या बोला? क्षणवर्ती पर्यायों का तो जन्म मरण है नित्य स्वभाव, पंच बाल यति के चरणों में तन संयोग वियोग अभाव। ये जिनेंद्र रचना में है और इसने ये प्रवचन सार विधान में भी डाल दी, क्योंकि बहुत से हमारे जो साथी लोग विधान कराते हैं पर उनको मिलती नहीं है, तो उनका आग्रह थे आप इसको भी इसमें डालो। तो ज्ञायक स्वभावी भगवान तो त्रिकाल निष्क्रिय ध्रुव है और उसकी वर्तमान परिणति जो है कारण शुद्ध पर्याय जिसको बोलते हैं वो ध्रुव का वर्तमान ध्रुव है। यहाँ न इसकी बात है न उसकी बात, यहाँ तो पर्याय में जो रत्नत्रय की साधना प्रकट हुई है वो अखंड पने अप्रतिहत भावे चलती जाएगी, कभी वो टूटने वाली नहीं, इसलिए उसको ध्रुव बोला। और बोला ना कौन सा शब्द है, अविचलित। अविचलित का अर्थ गुरुदेव ने ध्रुव किया, समझ में आया। ध्रुव मतलब सब जगह त्रिकाली ध्रुव होता है, ऐसा नहीं है। ध्रुव पर्याय में जो धारा अखंड चलती है, बाद में एक शब्द ऐसा भी लिया है, कोई कहेगा ये ग्यारहवें गुण स्थान से गिर जाते हैं, अरे छोड़ना ये बात है, गिरने मिलने की बात छोड़ो। यहाँ तो एक, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, गुरुदेव बेंसरी के रिफरेंस से बोलते हैं, जोड़नी छायक, सुना जोड़नी छायक, इसका क्या अर्थ होता है? वैसे तो पंचम काल में किसी जीव को छायक सम्यक्त नहीं होता, क्या आएगा तो सम्यक्त लेके तो आएगा नहीं, सम्यक्त लेके जाते देवगति में जाएगा, मनुष्य में आना होगा तो भोग भूमि में जाएगा, त्रिंश में भी आएगा तो भोग भूमि में जाएगा, समझ में आया। कोई पंचम काल में कर्म भूमि में सम्यक्त लेके नहीं आता है, लेकिन आके ले सकता है, लेके नहीं आता है पर आके ले सकता है। अरे मुनि दशा तक होती है तो फिर सम्यक दर्शन की क्या बात करना, तो लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले उपशम सम्यक्त होगा, फिर अंतर मुहूर्त में वो क्षयोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा, या पढ़ के गिर के फिर दोबारा क्षयोपशम में आ जाएगा। वो केवली सुरत केवली का समागम है नहीं, क्योंकि छायक सम्यक्त के लिए एक नियम है कि वो केवली अथवा सुरत केवली के समागम में रहता है, उसमें ही उत्पन्न होता है, ध्यान में आया। रहता तो कायम पर अनंत काल तक है, लेकिन उत्पत्ति केवली अथवा सुरत केवली के समागम में होती, ऐसा निमित्त निमित्त एक संबंध है, तो वो यहाँ चांस है नहीं। तो क्षयोपशम यू हुआ ना, कुंदकुंदाचार्य देव को भी, अमृत चंद्राचार्य, कुंदकुंदाचार्य जिनके अपन इतने गीत गाते हैं मुनि भगवंतों के, वे सब क्षयोपशम सम्यक्त वाले। अभी क्षयोपशम क्या है, उपशम क्या है, छायक क्या है, यहाँ क्लासें चलती हैं, उसमें आपको बताते होंगे सब। अभी वो क्षयोपशम सम्यक्त बहुत से जीव तो छूट करके फिर समझ लो छूट जाता है तो मिथ्यात्मे आ जाते हैं, ऐसे भी बहुत से जीव होते हैं। कोई उग्र पुरुषार्थी होवे तो उसको मेंटेन करता है, उसका पुरुषार्थ इतना होता है कि वो सम्यक्त से नीचे नहीं गिरता, मिथ्यात्व में नहीं आता, बल्कि आगामी भव में भी साथ में लेके जाएगा, छूटेगा नहीं जन मृत्यु के समय, तो आगामी भव में भी साथ में लेके जाएगा और केवली के सम्मुख जा करके छायिक में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो सम्यक्त की धारा नहीं टूटी, इसलिए जोड़नी, छायिक से ज्वाइंट होने वाला, जोड़नी माने छायिक से जुड़ने वाला, ऐसा सम्यक्त। तो अभी वो टूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं। और क्षयोपशम में जो क्षयोपशम क्यों कहते हैं मालूम, मिथ्यात् की तीन प्रकृतियां होती हैं, हैं? दर्शन मोह की, एक मिथ्यात्, एक सम्यक मिथ्यात् और एक सम्यक्त। मुझे आश्चर्य है आचार्यों ने मिथ्यात् की प्रकृति का नाम सम्यक्त रखा। ये तो ऐसा हुआ कि रावण अपने बेटे का नाम राम रख दे रहे समझ में आया ना, रावण अपने बेटे का नाम राम रख दे रहे, ये कैसे आश्चर्य की बात। पर आचार्यों ने वो मिथ्यात् की तीन बेटी, मिथ्यात् के तीन टुकड़े हुए, तो एक ने तो ओरिजिनल नाम, जैसे कांग्रेस के दो टुकड़े हुए तो एक ने तो अपना वो ओरिजिनल बैल बैल जोड़ी ले लिया था, फिर बड़ा चक्कर चला, वो कहते हमारी असली, तो वो मिथ्यात् प्रकृति बोलती है कि हम असली, हम मिथ्यात् हैं। दूसरी मिश्र प्रकृति होती, वो गिरते समय तीसरे गुण स्थान में होती, समझ में आया। और तीसरी जो है वो सम्यक्त होने के बाद भी, ये क्षयोपशम सम्यक्त में वो संकित प्रकृति का उदय बना रहता है, उसके निमित्त से बहुत अनजाने अनकॉन्शियस में अबुद्धि पूर्वक तो कुछ चलमल अगाड़ दोष होते हैं, वो सम्यक्त का घात नहीं कर पाते, सम्यक्त को कदाचित मलिन कर देवे थोड़ा बहुत, और वो उसको पता नहीं चलता है कि मेरे को ये चलमल अगाड़ दोष लगे, केवली गम में होते हैं वो, हैं बहुत सूक्ष्म है, लेकिन संकित के साथ में रह सकती है उसका उदय, इसलिए उसका नाम समकित प्रकृति रखा। देखो उसके जो डीएनए है ना उसका वो समकित प्रकृति का जो नेचर है उसका जो डीएनए है वो तो मिथ्यात है, लेकिन नाम उसका समकित रखा। ऐसे ही अभी देखो एक अंतिम 241 पेज मैं कम से कम 5-7 पॉइंट इसमें करता हूँ और 3-4 पे चर्चा होती है। देखो बहुत सुंदर है ये, अपन सबके काम का है भैया, खासकर हमारे काम का ज्यादा। नीचे से दूसरा पैराग्राफ 241 पेज, उसमें भी उस पैराग्राफ में भी नीचे से पांचवी पंक्ति समझ लो। आहा हा एवो जे सहज पड़ाव, आहा हा सम्यक प्रकारे स्थापिने, सांची रीते स्थापिने। ये ऊपर से आ रहा है, मुक्ति हेतु भूत निरूपम सहज ज्ञान दर्शन चारित्र रूप नित्य आत्मा मां आत्मा ने खरेखर सम्यक प्रकारे स्थापिने, आत्मा को आत्मा में स्थापित करके, वो है वो उपयोग में उपयोग है, है? आत्मा में यानी ज्ञायक स्वभाव में आत्मा को यानी उपयोग को स्थापित करके यानी उसके सन्मुख हो करके। अभी गुरुदेव ने क्या कमेंट्स किया, शास्त्र नु वांचन करीने धारी ने ए वस्तु नहीं काई, खुद शास्त्र पढ़ रहे हैं, खुद लोगों को शास्त्र पढ़ा रहे हैं, श्रोताओं के हाथ में भी ग्रंथ होना, ये पद्धति गुरुदेव श्री से ही प्रारंभ हुई और इसका इतना बड़ा एक समझ लो क्रांतिकारी असर हुआ कि लाखों लोगों को ग्रंथ हाथ में खोल करके स्वाध्याय की आदत पड़ गई। यानी ये स्वाध्याय के संस्कार जो हैं वास्तव में गुरुदेव श्री ने इस परंपरा से डेवलप किए कि हर एक के हाथ में ग्रंथ होवे। कई लोग उसको थोड़ा अच्छा भी नहीं मानते थे कि खुद ऊपर बैठते हैं ग्रंथ नीचे रखते हैं। एक दफे गुरुदेव ने इसका खुलासा भी किया है, इसका खुलासा भी किया है, उसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो ये बात मैंने क्यों कही, खुद तो शास्त्र वांचन 2-2 घंटा करते हैं, समय सार 19 बार सभा में बांचा, पर्सनल तो सैकड़ों बार बांचा, और यहाँ कहते हैं शास्त्र नु वांचन करीने धारी ने ये वस्तु नथी काई, शास्त्र नु वांचन करियू अने एमा धारियू, धारियू एटले धारणा में ले लिया, अपने अंदर वो धारणा ज्ञान में वो बात जम गई। चार होता ना अवग्रह या अवाय धारणा, तो धारणा ज्ञान में आ वो आत्मा छे, ऐसा मन में धारणा बन गई। गुरुदेव कहते आमा कई माल न थी सोचने लायक बात है भाई, ये गुरु कहाँ ले जाना चाहते, वो मंजिल तक ले जाना चाहते, वो उससे 10 मीटर दूर भी आपको खड़े नहीं रखना चाहते। समझ में आया, ये विकल्प में नहीं, मैं ज्ञायक हूँ मैं शुद्ध हूँ शांति से बैठ गया चिंत, वो होता है सब, पर ये समझ के रखना कि इसमें कोई माल नहीं है, ये अभी मंजिल नहीं मिली, क्यों ये कायमे से निकाला गुरुदेव ने, ये अर्थ कहाँ से निकाला इसमें, सम्यक प्रकारे स्थापिने। तो आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थापन कैसे होता है उसको नास्ति से उन्होंने बताया कि ये जो अपन सोचते हैं कि हमने समय सार पढ़ लिया कि प्रवचन सार पढ़ लिया कि आत्मा आत्मा के बारे में जानने लगे कहने लगे, अरे तर्क से युक्ति से आत्मा को सिद्ध करने लगे, इसमें कोई माल नहीं। आहा ए बाहर ना शास्त्र ना वांचन, सुनो भैया दूसरों को क्या बोलना, अपने को बोलता हूँ ए बाहर ना शास्त्र ना वांचन अने ज्ञानी महिमानु आश्चर्य अने विस्मय जेने लागे ए परमात्मा ने खोई वैसे छे। बताओ बाहर की महिमा में अटक गया, ऐसे एक जगह उसमें लिखा है, मैं बाद में भी एक दो पेज बाद आया है कि दूसरे पैसे की धन की मकान की उसकी महिमा में महिमा भाषित होती है, उसको आत्मा की महिमा भाषित नहीं होती, इसमें आत्मा खो जाता है। देखो शास्त्र वांचन से आत्मा खो जाता है ऐसा नहीं बोला, सावधानी से सुनना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है, सावधानी से सुनना, शास्त्र वांचन में आत्मा खो जाता है ऐसा नहीं कहा। क्या बोला? शास्त्र वांचन में विस्मय जेने लागे छे, उसकी महिमा छे उपशम ज्ञान की, परलक्षी ज्ञान की, संस्कृत की, प्राकृत की, न्याय की, व्याकरण की, काव्य की, उसकी महिमा जिसको आती है, महिमा का निषेध है वो व्यवहाराभास संतुष्टि, उसका निषेध है। ए परमात्मा ने खोई भैसे छे, आहा ए निज परमात्मा ने खोई भैसे छे। ऐसे हर प्रवचन में अपने को ऐसे बहुत मार्मिक जो हैं वो प्रकरण मिलेंगे, और आप सब तो इसका लाभ ले ही रहे हैं। तो अभी जैसा कि क्रम है, एक गीत जो है, ये जो अपना वीटी स्टेशन के पास में हॉस्पिटल है ना, कौन सा है? हाँ, वहाँ वो डॉक्टर सुभाष जी थे पहले,
जीटी और,
हाँ जीटी हॉस्पिटल, तो उनके चेम्बर में बैठ के गीत की रचना हुई थी। थोड़ा वो कहीं चले गए तो मैं फ्री था, तो उन्हीं का लेटर हेड लेकर के और सोचा, क्योंकि बहुत दिनों से घूमता था दिमाग में लिखने का, वहां हूँ। बहुत प्रेरणादायक है और सरल है, इसलिए अर्थ करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सब रिपीट करेंगे, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
निज में निज पर में पर भासक सम्यक ज्ञान होगा,
निज में निज पर में पर भासक सम्यक ज्ञान होगा,
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सम्यक दर्शन होगा,
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सम्यक दर्शन होगा,
शुद्धात्मा
का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
नौ तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे,
नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे,
पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे,
पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे,
शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
शुद्ध आत्मा का
श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिणति घन टकराएंगे,
निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिणति घन टकराएंगे,
शुद्ध यतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे,
शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे,
मोह महामल प्रक्षाल होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा,
मोह महामल प्रक्षाल होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा।
शुद्धात्मा का
सदान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा।
आत्मा के उपवन में रत्न त्रय पुष्प खिलाएंगे,
आत्मा के उपवन में रत्न त्रय पुष्प खिलाएंगे।
स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे,
स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे।
संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा।
संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा।
निज में निज पर में पर भाषक सम्यक ज्ञान होगा,
निज में निज पर में पर भाषक सम्यक ज्ञान होगा।
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सम्यक दर्शन होगा,
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सम्यक दर्शन होगा। शुद्धात्मा का सदान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा।
निज आत्मा
तब भगवान होगा।